क्या गलती हुई है आपसे? अब अहाना उसकी बात काटते हुए एकदम से उसकी ओर पलट गई। अक्षय पहले तो चौंक गया, फिर उसने अहाना की उन बड़ी बड़ी सुनेगाहों में झांकते हुए संभलते हुए जवाब दिया, मैं परेशान था, आपकी चिंता थी मुझे, और उन सब में मैं आपका पक्ष सुने बिना ही आप पर नाराज हो गया। अक्षय ने इतना कहा और चुप हो गया। अहाना ने ही उसकी बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि आपने हमसे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा और जो मम्मी जी ने आपको कहा उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया कि लापरवाही हमसे हुई है। पर यह आपकी गलती नहीं, क्योंकि आप उनके बेटे हैं और अपनी माँ पर विश्वास करना गलत नहीं, पर हमारे भी पति हैं आप, और बिना हमारा पक्ष जाने जिस तरह से आपने हमें दोषी ठहरा दिया वो गलत था, पर फिर भी हम नाराज नहीं हैं आपसे, बस बात करने का मन नहीं हमारा। अक्षय पल भर खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में उसके कहे शब्दों की सच्चाई तलाश रहा हो। कुछ पल बाद उसने गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, मम्मी और आपके बीच कुछ हुआ है? अहाना जो गहरी सोच विचार में खोई थी उसका ये सवाल सुनकर जैसे गहरी नींद से जागी, चेहरे के भाव पल भर को बदले, फिर उसने उसी सपाट लहजे में जवाब दिया, उनसे पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छे से बता देंगी आपको। अहाना ने एक बार फिर रुख फेरते हुए लेटना चाहा, पर अक्षय ने उसकी बाँह पकड़कर रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आप बताइए कि क्या हुआ है? हमने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये बात उन्हें बुरी लग गई। अहाना के रुख पर नाराजगी उभरी थी, पर अक्षय बेहद गंभीर था। पूरी बात बताइए अहाना, नहीं बताएंगे तो उनकी बातों पर एक बार फिर से विश्वास कर लेंगे। अक्षय कुछ पल उसके नाराजगी भरे चेहरे को देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, नहीं, एक ही गलती बार बार नहीं करता मैं, अब पूरी बात बताइए मुझे। अहाना कुछ पल खामोशी से उसे तकती रही, फिर उसने उसके और रूपाली जी के बीच हुई सारी बात उसे एक एक करके बता दी। हम उनसे वो सब कहना नहीं चाहते थे, पर उनके वजह से आपके और हमारे बीच गलतफहमियों की दीवार बनते खामोशी से सह भी नहीं सकते थे, इसलिए हमने बेहद शांति से उनसे बात की थी, कोई बदतमीजी नहीं की थी, बहस भी नहीं की थी और आवाज़ तक ऊँची नहीं की थी। सच बता दिया हमने आपको, विश्वास कर सकें तो कर लीजिए, वरना मम्मी जी की बातों को ही सच मान लीजिए, हम शिकायत नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने निगाहें झुकाई और अपनी बाँह पर से अक्षय की हथेली हटाने लगी। आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करूँगा? अक्षय के शब्द अहाना के कानों में पड़े और अहाना की निगाहें उसकी ओर उठ गईं। अब कुछ लगता ही नहीं हमें, आज आपने मम्मी जी की एक बात पर बिना सोचे समझे और हमसे कुछ पूछे विश्वास करके हमें गलत ठहरा दिया, तो कल दूसरी बात पर भी ऐसा होगा। अजीब सी उदासी झलक रही थी उसकी आवाज़ में और उन आँखों में सूनापन पसरा हुआ था। शायद उम्मीद टूटी थी, दिल आहत हुआ था और कुछ था जो चुभ रहा था। सॉरी अहाना, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? आई प्रॉमिस, दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ़ कर देंगी तो आप दोबारा कभी बिना हमारी बात सुने पहले से कोई धारणा नहीं बनाएंगे? हमें दोषी ठहराने से पहले हमें हमारा पक्ष रखने का मौका देंगे? हमेशा, पक्का वादा। शाम से लेकर अब जाकर अहाना की सूनी निगाहों में कुछ अलग से रंग उभरे थे और नाराज़गी के बादल को छटते नजर आए थे। अनु, नाराज़ थी ना आप मुझसे? कुछ देर बाद अक्षय ने अपने सीने से लगी अहाना के बालों में अपनी उंगलियों को उलझाते हुए सवाल किया। अहाना ने उसके सीने से सर बाहर निकालकर उसे देखा और इनकार में सर हिलाते हुए मायूसी से बोली, नहीं, पर आपने हमारी बात भी नहीं सुनी और हम पर गुस्सा करने लगे, ये बात बुरी लगी कि हमें? आई प्रॉमिस, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, पर आगे से कोई भी बात होगी तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, ताकि मेरे पास आपको डिफेंस करने का मौका हो, समझी? अहाना ने हामी भरी, फिर पल भर ठहरने के बाद उसने आगे कहा, सॉरी, हमें आपको बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक गलती आपसे हुई और एक मुझसे, आगे से हम दोनों ही ध्यान रखेंगे कि दोबारा ऐसी स्थिति कभी न बने। अहाना ने सर हिलाया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी बाहों को उसकी पीठ पर लपेट दिया। अक्षय ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक तरफ अहाना आंखें मूंद उसके बाहों में समाये सुकून को महसूस कर रही थी, तो दूसरी तरफ अक्षय खुली आंखों से सीलिंग को घूरते हुए चेहरे पर गंभीर भाव लिए आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। जीजी, अंतरा झटके से अहाना के गले से लग गई थी। अहाना भी अपनी बहन को अपने सामने देखकर भावुक हो गई थी और उसे अपने सीने से लगा लिया था। आज अंतरा सहगल निवास आई थी और अब से कुछ दिन यहीं रहने वाली थी, जिसका पूरा क्रेडिट अक्षय को जाता था। अन्वय ने अपने वादे के अनुसार अक्षय से बात की थी और उसने जयेश जी जयंती जी को अंतरा को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ भेजने को कह गया था। दोनों बहनों को साथ देखकर इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि कुछ दिन पहले ही दोनों मिली थीं। असल में अहाना को यहाँ आए अब 2-3 महीने बीत गए थे। उसका पहला करवा चौथ का फंक्शन सहगल निवास में हुआ था, तो वहीं दिवाली पर वो अपने घर गई थी और 3-4 दिन ठहरने के बाद वापस यहाँ चली आई थी। अहाना का पहला करवा चौथ कुछ चैलेंजिंग रहा था। रूपाली जी उसे कुछ बताने के बजाय ताने मारती रही थी। सारा दिन बिना कुछ खाए पिए वो कामों में लगी रही थी और रात को अक्षय की नाइट ड्यूटी होने के कारण वीडियो कॉल पर ही अहाना ने अपना व्रत खोला था। दिवाली दोनों की अलग अलग ही मनी थी। इस दौरान परेशानियां बहुत आई थीं और रूपाली जी उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी करने, उसे परेशान करने की हर संभव कोशिश करती थी। उनका व्यवहार अब भी नहीं बदला था। बेहद चालाक और शातिर औरत थी वो। अक्षय के सामने दिखावा करती थी तो उसकी गैर मौजूदगी में अपना असली चेहरा दिखाती। वो हमेशा आहाना को अपने नीचे दबा कर रखने, उसे नीचा दिखाने की, सबके सामने गैर जिम्मेदार साबित करने पर लगी रहती थी। पर आहाना अब पहले से अलर्ट रहती थी, जरूरत पड़ने पर जवाब भी दे देती थी, पर मर्यादा में रहकर। रूपाली जी तो रिश्तेदारों में भी फोन करके यही जताती जैसे उनकी बहू कितनी खराब है। जो लोग आहाना और उसके व्यवहार से परिचित थे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, पर उनकी बहन संग वो खूब चुगली लगाती थी। अक्षय ने घर के कामों के लिए एक मेट रख ली थी, जो सुबह नाश्ते में मदद करवाने से लेकर घर की साफ सफाई और सबके नाश्ते के बाद बर्तन धोकर रसोई साफ कर जाती थी, जिससे आहाना को कुछ राहत मिल गई थी। बाकी के काम वो स्कूल से आकर कर लिया करती थी, पर उसका बुरा नसीब कि कोई मेट ज्यादा वक्त तक घर में टिकती ही नहीं थी। रूपाली जी इतनी कमियां निकालती और हर काम में टांग अड़ाती, खूब सुनाती, चिक चिक करती कि तंग आकर मेट काम छोड़कर ही चली जाती। अब वो पैसे के लिए काम करती थी, बेवजह किसी की चिक चिक बाजी क्यों सहेंगी। नौकरानी है, घर की बहू थोड़े ही की जैसे मर्जी ट्रीट करो और वो सब खामोशी से सहकर भी आपकी सब बात सुनकर भी काम करके देगी। उनके नखरे तो VIP जैसे होते हैं, जरा सी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते। खैर जैसे भी था, आहाना ने पूरे घर को मैनेज करना सीख लिया था। अपनी मौजूदगी में ही मेट से सब काम करवाती और उसके जाने के बाद अन्वय ख्याल रखता था कि रूपाली जी मेट से जरा दूर ही रहें। आहाना का काम कुछ आसान हो गया था। स्कूल में भी अब वो उस माहौल के अनुसार ढल गई थी। अब जब कभी उसे देर होती तो वो सीधे अक्षय को ही फोन करती थी। दोनों ख्याल रखते थे कि दोबारा उनके बीच पहले जैसी स्थिति ना बने। फेस्टिवल सीजन में आहाना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सब कामों की जिम्मेदारी उसी पर थी। नवरात्रि में व्रत के बावजूद सुबह से लेकर रात तक कामों में लगी रहती थी और रूपाली जी एक काम नहीं छूती थी। अभिजीत जी कुछ कहते तो वो सीधे से जवाब देती कि अपने वक्त पर उन्होंने भी सब अकेले ही संभाला था, तो अब बहू अपना फर्ज निभाए।
आहाना को अपने लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता था, पर अक्षय काफी ख्याल रखता था उसका और अक्सर अन्वय रात के कामों में उसका हाथ बटा देता था। कुल मिलाकर सबके साथ के सहारे उसने उस मुश्किल वक्त को पार कर लिया था। और रूपाली जी को मजा तब आया जब दिवाली में आहाना चली गई, मुफ्त की नौकरानी घर से निकली और सारे काम का बोझ उनके सर पर आ गया। मेट से उनकी बनती नहीं थी और उनकी चिक चिक से तंग आकर वो आधा अधूरा काम करके चली जाती। उसके बाद उसे भला बुरा सुलाकर आहाना को मन ही मन कोसते हुए उन्हें ही सब काम करना पड़ता। आदत छूट जाने पर परेशानियां भी होती और आहाना की गैर मौजूदगी में चीजें भी नहीं मिलती थीं, जिससे वो और ज्यादा खींच उठती। खैर आहाना वापस आ चुकी थी, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल चुकी थी, उनकी मुसीबत खत्म हो गई थी, पर कद्र उन्हें तब भी नहीं हुई आहाना की। हाँ, उसे जी भरकर कोसा जरूर उन्होंने। उसके कामों में कमियां निकालना तो उनकी आदतों में शुमार हो चुका था। आहाना से मिलने के बाद अंतरा ने अभिजीत जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। रूपाली जी को देखते ही उसका मुंह बन गया। वो भी तो कुछ खास खुश नहीं थी उसके आने से। वो तो अक्षय को कुछ कह नहीं सकी और आज अंतरा नाम की आफत उनके सर पर सवार हो गई थी। खैर औपचारिकता निभाते हुए अंतरा ने उनके भी पैर छुए, फिर खुशी से चहकते हुए अक्षय की ओर बढ़ गई। नमस्ते जीजू, आदर सहित अंतरा ने उसके पैर छू लिए। अक्षय ने भी दिल खुशी से मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया। कैसा रहा सफर, कोई परेशानी तो नहीं हुई? अन्वय ने रास्ते में तंग तो नहीं किया?